نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رهبر كامل میں سے آج جو چپٹر ہمارے سامنے ہے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عابد کی حیثیت میں. نواں باب ہے، یعنی 9 نمبر چیپٹر ہے، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہونے کے باوجود عبادت کیسی تھی. اور مجھے تو پڑھنے سے پہلے ہی خوف آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں کا پھر کیا تقابل کرنا ہوگا، لیکن اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو بھی بڑھا دے. آج نام تو بہت سارے لوگوں کا عابد ہوگا، لیکن اصل عابد کیسے ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کثیر المشاغل ہونے کے، کثیر المشاغل کہتے ہیں بزی ہونے کے، بہت سارے مشغلے تھے آپ کے، ٹو مچ بزی، اس کے باوجود جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ شاید سوائے عبادت کے آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. دن بھر تو اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے آپ کو تنہائی کا موقع بہت ہی کم ملتا، مگر رات کو تھوڑا سا آرام فرمانے کے بعد قریباً آپ اپنا سارا وقت عبادت ہی میں صرف کر دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اکثر 11 رکعت تہجد پڑھا کرتے، اور یہ نماز اتنی لمبی ہوتی کہ ایک ایک سجدہ 50-50 آیتوں کے برابر ہوتا، یعنی جتنی دیر 50 آیتیں پڑھنے میں لگیں اتنی دیر آپ سجدے میں رہتے، یعنی اتنی دیر سجدے میں پڑے رہتے جتنی دیر میں کوئی 50 آیتیں پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کیا نبوت کی ذمہ داریاں اور لوگوں تک پیغام پہنچا دینا کافی نہیں تھا اجر پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کافی تھا، کافی سے زیادہ تھا، لیکن وہ چیز جو آپ کو تبلیغ کے کاموں کو کرنے کے قابل بناتی ہے نا، وہ تنہائیوں میں رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا نا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اس میں ایک لفظ آتا ہے نا کہ ان لکفن نہاری سب ان طویلا سب خان ان لکفن نہاری سب ان طویلا، کہ دن میں آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں، راتوں کو کھڑے ہوں. کیوں؟ کہ ان ناشیت اللیلی، رات کا جاگنا بات کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے کام کرنے کے شوقین لوگ، ان کو جو فیول ملتا ہے، جو اس کام سے کمٹمنٹ اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ جو صبر ملتا ہے، وہ رب کے ساتھ تعلق جوڑنے سے اور تنہائی میں کی ہوئی عبادتوں سے ملتا ہے. آپ اس کا مشاہدہ خود بھی اپنے اور پہ کر سکتے ہیں کہ جس دن آپ کو رات میں نماز کی توفیق ہو جائے، 2 نفل ہی کیوں نہیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، رات ہو یا دن ہو، جب کسی کام سے پہلے آپ کو اتنا موقع مل جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، جیسے استخارہ یا کوئی اور ایسی چیز کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہو، تو اس کے بعد دل کی کیفیت بدل جاتی ہے نا. بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب अल्लाह के दीन को पहचान रहे थे और मुश्किलात भी थी और आजमाइशें भी थी। इसके बाद अगर आपका अल्लाह ताला से ये मजबूत ताल्लुक ना होता तो आप ठहर नहीं सकते थे। तो लिहाजा इतने हिस्से से जो हमारे लिए बात है वो क्या कि अगर आज हम भी उसी मिशन को लेके चलने के शौकीन हैं, अगर आज हम भी चाहते हैं कि रब का पैगाम उसके बंदों तक चला जाए, तो फिर हमें रातों की तन्हाइयों में रब को पुकारना होगा। आप कहेंगे अभी हमने इसका बाज़ाब्ता तौर पे इरादा नहीं किया, या अभी हमने तो नहीं सोचा इस पे, लेकिन मैं इस बात को इस तरह महसूस करती हूँ जब लोगों के मुझसे एक बात सुनती है, और वो क्या, और वो कहते हैं कि हम लोगों को बुलाते हैं, लोग आते ही नहीं। हम बड़े प्यार से कहते हैं आओ क्लास सुनो, वो आते नहीं, कहते हैं ना। बस इसका जवाब है, हमारी पुकार में असर कब आएगा? जब रात की तन्हाइयों में रब के सामने लोगों की बेदीनी पे कुढ़ेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, उसके साथ इबादत का मामला मजबूत करते जाएंगे, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी बात के लिए खैर डाल देगा, अल्लाह ताला हम सबको इबादत में बढ़ा दे। और ये जो बात हुई कि 11 रकतें पढ़ते थे और एक सजदा 50 आयतों का था, तो इससे कोई ये ना समझ ले कि आप सजदे में 50 आयतें पढ़ते थे। यहाँ मैंने खास तौर पे आपको ये बात नोट करवाई क्योंकि बाज़ लोग इसे ये समझने लग जाएंगे कि 50 आयतें पढ़ते थे मतलब क्या कि इतनी लंबी दुआ करते थे, क्योंकि सजदे में कुरान नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ दुआएं मांगते थे लेकिन बहुत तवील दुआएं थी। और आप देखिए कि सजदे में ही क्यों, खड़े होके हाथ उठा के क्यों नहीं? हमारे यहाँ अमूमन मारूफ अंदाज से दुआ मांगने का कि हाथ खड़े करके और मिला के, सीधे हाथ दोनों को मिला के, बस अपने लाइनों को अंदर मिला रहे होते हैं, कोई बे बना रहे होते हैं, कोई कुछ। एक यंग लड़की थी तो मैंने उसको देखा तो वो उल्टे हाथ करके दुआ मांग रही थी। जैसे आमतौर पे तो यूं करते हैं ना कि पाम अंदर होती है, हथेली अंदर, तो वो यूं मांग रही थी, यानी जो बाहर के हिस्से हैं ना, जो बाहर जहाँ नाखून भी, उसको अपने मुंह की तरफ। और यूं तो मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? कह रही नहीं, मुझे किसी ने बताया कि अगर इस तरह मांगे तो अल्लाह जल्दी सुनता है। तो बहरहाल ये तो एक बात थी, लेकिन हाथ रब के सामने उठने चाहिए, सीधे उठें या पुश्त की तरफ से उठें, लेकिन रब के लिए रब की तरफ उठते हैं तो फिर खाली नहीं रहते। लेकिन जो सजदे के अंदर दुआ की कबूलियत होती है या जो लुत्फ मिलता है ना, वो आम हालत में नहीं आता। हमारे कल्चर में सजदे में जाके दुआ करने का तसव्वुर नहीं, हम सजदे को नमाज ही का सजदा समझते हैं। हालांकि आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लम सजदा कितनी कसरत से करते थे। सजदे शुक्र आपसे साबित है, कोई खुशी की खबर मिलती तो सर जमीन पे रख देते, इसी तरह कोई गम की खबर मिले तो वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, सजदे में जाना। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम, मैं जन्नत में आपका कुर्ब पाना चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, तो आपने क्या फरमाया कि तुम फाइनी अला कसरत सुजूद, तुम मेरी मदद करो सजदों की कसरत से। इशारा था कि नफिल ज्यादा पढ़ा करो, लेकिन सजदे का लफ्ज आपने बोला नफिल की जगह पे, तो इससे क्या पता चलता है कि सजदे में बंदा रब के बड़े करीब होता है। और फिजिकली भी तो कुर्बत आती है ना, सब छूट जाता है। आप खड़े हुए देख रहे हैं तो साथ आप पर्दे भी देख रहे होते हैं, बाद लोग दुआ मांग रहे होते हैं, साथ कमरे का जायजा भी ले रहे होते हैं, इधर ये है और उधर ये है और इस तरह से और उधर से ये। लेकिन जब आप सजदे में जाते हैं ना तो सारे दर बंद हो जाते हैं, कट डाउन, एक बैरियर आ जाती है, एक रुकावट आ जाती है आपके और दूसरी चीजों के बीच में। तो इसलिए आप सजदों में ज्यादा दुआएं मांगते थे। आपकी इबादत का नक्शा सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हों से मरवी है, यानी रिवायत है कि एक रात में नबी एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोया। अभी रात थोड़ी गुजरी थी कि आप उठ खड़े हुए, वजू किया, नमाज पढ़ी। आपने इस नमाज में अपने क्याम और रुकू और सजूद को, सजदे की जमा, बहुत दराज किया, यानी बहुत लंबा किया। फिर सो गए, यहाँ तक कि खराटे लेने लगे, यानी मीठी नींद सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठे, वजू किया और इसी तरह नमाज पढ़ी और पढ़कर फिर सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठे, اور اسی طرح نماز پڑھی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ رات میں 3 بار اٹھے اور نماز پڑھی. جیسے کوئی زیادہ سونے سے بیزار ہوتا ہے اور نماز سے تسکین حاصل کر کے پھر سو جاتا ہے. اگرچہ آپ کا سونا بھی عبادت تھا, لیکن پھر بھی یہ سب کچھ امت کو سکھانے کے لیے تھا, تاکہ ان میں بھی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے, اور وہ بھی تہجد گزار بن کر نالہ نیم شبی کا لطف حاصل کر سکیں. نالہ کہتے ہیں آہوزاری کو, رونا, اور نیم شب آدھی رات, شب کے ساتھ نیم آدھی, یعنی آدھی راتوں میں اٹھ کے رب کے سامنے رونے کا لطف حاصل کر سکیں. کتنی پیاری روایت ہے نا. جو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے نا, یہ آپ کی بیوی کے بھانجے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے یہ بیٹے تھے. تو چھوٹی عمر میں, یعنی جیسے لڑکپن ہوتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور آپ نے آپ کے گھر میں سوئے. بہت ہی پیاری یہ روایت تفصیلات سے بھی ملتی ہے, لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ اٹھ کے دیکھنا دیکھ رہے ہیں, کیا اس بچے پہ اثر نہیں آئے گا؟ اور یہی ہے وہ کہ جنہوں نے ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز پڑھتے دیکھا, تو جلدی سے وضو کر کے آ کے تو آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے, لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے نماز کے دوران ہی ان کو ان کے کان سے پکڑا اور اپنے پیچھے سے گزار کے سیدھی طرف کر لیا, کیونکہ اس میں مسئلہ پتہ چل گیا کہ اگر امام کے ساتھ دوسرا کوئی ایک ہی ہو تو وہ امام کے دائیں طرف, یعنی رائٹ سائڈ پہ ہوگا. تو یہ بھی اسی موقع کی باتیں ہیں. آپ دیکھیے کتنے خوش قسمت تھے نا وہ لوگ, خالہ کے گھر جا رہے ہیں اور خالو ان کی عبادت کا ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں اور راتوں کی تہجدیں سکھا رہے ہیں. آج ہمارے بچے جب خالاؤں اور ماموں کے گھروں میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اکثر؟ ان کو تو اپنی کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں رہتی, اور شاید یہی لگتا ہے کہ اب یہاں کچھ نہ کہا جائے کیونکہ بچے نانی کے گھر آئے ہوئے. بامقصد لوگ ہوتے ہیں, ان کی ویکیشنز بھی بامقصد ہوتی ہیں. تو دل میں نیت کیجئے کہ بچوں کو چھٹیوں میں اگر کہیں لے کے جانا ہے تو ایسی جگہ یا ایسے رشتہ داروں کے گھروں میں رکھیے کہ جو ہم سے زیادہ عبادت میں بڑے ہوں, اور ان کو کہیے کہ یہ تربیت کریں. عموماً جب سمر شروع ہوتا ہے نا تو ماں باپ پریشان ہونے لگتے ہیں, کیا کریں کیسے کریں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فارغ وقت ضائع کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں, کہیں سوئمنگ کے نام پہ, کہیں کچھ. اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ اثر جو آنا تھا دوسری طرف سے ذرا بچنے کے بعد جو ماحول سے نکلے, وہ اور ہی اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ سمر جو ہوتے ہیں یہ بڑے بامقصد ہونے چاہیے. اچھی صحبت ملے, اچھے ساتھی ملیں, اچھے لوگوں کا ساتھ جب آتا ہے تو انسان کا اپنا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ نیکی کرے. تو لہٰذا اس چیز کی بات ہر انسان کو انشاءاللہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. پھر دوسری چیز اس میں ایک اور پتہ چلی, اور وہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینیاں. بار بار کون اٹھتا ہے جس کے دل کو غم لگا ہوتا ہے؟ کوئی آپ ایسی رات یاد کریں کہ جب کوئی آپ کا بچہ بیمار تھا, نیند آ جاتی ہے, آنکھ لگتی ہے, لیکن پھر ایک دم اٹھ اٹھ کے آنکھ کھولتی ہے اور ماں بچے کو دیکھتی ہے, دل کو بے چینی لگی ہوتی ہے نا. یا کبھی کوئی بڑا غم کا بوجھ ہو دل پہ, پاکستان میں کسی کی خبر کوئی سن لی ہو, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی کسی مشکل میں آیا ہوا ہے, تو رات کو ایک دم اٹھ اٹھ کے انسان دیکھتا ہے نا اور دعائیں نکلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا غم لگا ہوا تھا, اس لیے بار بار اٹھا کرتے تھے. اور ہر وہ شخص جس کے دل کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا, پھر اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. ان کی راتیں ساری ساری رات بستروں پہ ایسے نہیں گزرتی جیسے کہ وہ سوکھی ہوئی لکڑی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سورت منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. آیت نمبر 4 ہے یہ, سورت منافقون کی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں, تو جیبو کا اجسامہم, آپ کو ان کے جسم بڑے خوبصورت لگتے ہیں, یعنی اپنے جسم کے لیے بڑے کیئر فل ہوتے ہیں, یہ سجاتے رہتے ہیں اپنے جسم کو. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ, और जब ये बात करते हैं तो आपका दिल चाहता है कि मैं इनकी बात सुनता ही रहूं, यानी बड़ी दिल फरेब बातें करते हैं। कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, जैसे कि ये सूखी हुई लकड़ियां हैं। अब ये तफसीर तो इसकी कोई बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसकी तफसीर में एक लफ्ज़ जो मुफसरीन लिखते हैं वो क्या है कि मुनाफिक जो है वो सारी रात बिस्तर पे इस तरह सोया रहता है जैसे कि लकड़ी को एक जगह रखते हैं तो हिलाओ ना तो हिलती नहीं, यानी सारी रात गफलत में चली गई। हमारी रातों का क्या हाल है? क्या हमारे अंदर भी बेचैनियां लगी हुई हैं? अल्लाह के नबी सल्लम फरमाया करते थे कि मुझे जो आखरत के मामले मालूम है, अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम जंगलों में निकल जाओ, बिस्तरों पे बीवियों से लज्जत लेना छोड़ दो। असल बात यह है कि जब गम लग जाएंगे आखरत के तो नींद कम हो जाएगी। अल्लाह हमारी नींद कम कर दे। हमारा तागूत हमारी नींद है, कहीं हमारा तागूत हमारी भूख है, कहीं हमारा तागूत हमारी महफिलें हैं जो हमें अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आने देता। एक शख्स थे तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए लोग। आपको पता है कि पहले नेक लोगों के पास इस नीयत से भी जाया करते थे कि जरा इनके शब रोज तो देखें, ये नहीं कि कोई तजस्सुस करें और बाहर आके कहते हैं देखो ये तो कोई इबादत नहीं करते, बल्कि वो देखना चाहते थे कि इनके क्या अमल है कि हम वो काम करें। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने उनके साथ एक रात बसर की और बाद में इस चीज़ की गवाही दी कि मैंने एक रात में गालिबन, जो मुझे इस वक्त याद है क्योंकि मैं आपको हफ्से से सुना रही हूँ, 70 से 80 बार इमाम बुखारी को उठते देखा। लिखने में मसरूफ होते, ऊंग लग आ जाती, आंख लगती, चंद मिनट नहीं गुजरते फिर उठ के एकदम जैसे बंदा वो बिदक बिदक के उठता है ना, फिर उठते होते फिर हदीस लिखनी शुरू हो जाते, फिर नींद आती फिर सो जाते, वहीं बैठे बैठे सो जाते, फिर उठते कई बार एक रात में ये हुआ। कौन ऐसा कर सकता? हम भी कई रातें जागते हैं जब हमारे पेपर होने होने होते हैं एमए के, जब हमें बीकॉम के पेपर करने, जब हमें मेडिकल के पेपर्स देने होते हैं फिर हम जागते हैं। कितनों की रातें रब के लिए जागती हैं? कितने हैं जो इसलिए अलार्म लगा लगा के सोते हैं कि नहीं सारी रात सो गए तो अगले दिन का काम नहीं हो सकेगा, अगले दिन के कामों की प्लानिंग रातों को होगी, अगले दिन के काम की तैयारी रातों को होगी। रात बहुत ज़्यादा ऐसी नेमत है कि जो आपको वो काम जो दिन में आप 4 घंटे में नहीं कर पाते वो रात में आप 1 घंटे में कर लेते हैं। जो लोग जिंदा होते हैं उनकी रातें जिंदा होती हैं और जो सोते हैं उनकी रातें भी सोती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी आता है कि एक शख्स थे, उस्मान नहदी उनका नाम था जो गालिबन मुझे याद है, तो नबी सल्लम की जुबान से अबू हुरैरा की बड़ी तारीफ वो सुना करते थे। तो एक दिन उनके दिल में रश्क आया कि चलो मैं जाके देखता हूँ अबू हुरैरा क्या करते हैं ताकि मैं भी वैसा बन जाऊँ। उस वक़्त हसद नहीं थे या तकाबुल नहीं करते थे कि अच्छा हम भी वो करें, वो वैसा बनना चाहते थे। और वो कहते हैं कि मैं अबू हुरैरा के घर में गया और मैंने कहा कि अबू हुरैरा मैंने किसी बात पे कसम खा ली है कि 3 रातें अपने घर में नहीं जाऊंगा, तो मुझे इजाज़त दें कि मैं आपका मेहमान बन जाऊं। उन्होंने कहा ठीक, क्योंकि मुसलमान का एक दूसरे पे हक है कि वो उसकी कसम को भी पूरा कराए और उसकी मदद करे। अब ये 3 रातें उनके घर में रहे, बल्कि एक और मौके पे भी आता है। तो बाद में जो इन्होंने खबर दी, कहते हैं कि मैंने देखा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रात के 3 हिस्से हैं। जब रात का पहला हिस्सा शुरू होता है तो अबू हुरैरा खड़े हो जाते हैं तहज्जुद के लिए और कुरान पढ़ते हैं। फिर जब एक पहर गुजर जाता है, सोने का इरादा फरमाते हैं तो अपनी जौजे मोहतरमा को उठा देते हैं, बीवी को, फिर वो कुरान पढ़ती हैं तहज्जुद में। और जब वो सोने का इरादा करती हैं तो फिर घर में एक मुलाजिम है जो इसी नीयत से रखा हुआ है, वो उठता है और कुरान पढ़ता है। क्यों? कि घर हो अबू हुरैरा का और रात का कोई पहर ऐसा हो कि अल्लाह के कलाम की आवाज़ वहां से ना आए। आज हम भी तो अपनी रातों का हिसाब लगाएं, शायद आज भी अक्सर मुसलमानों की रातों के तीन ही हिस्से हैं कि जिसमें पहला हिस्सा पाकिस्तानी के लिए है, दूसरा हिस्सा इंडियन मूवी के लिए है, और तीसरा तो शायद वो है कि जिसका जिक्र ना किया जा सके। सोचने की जरूरत है, हम कहाँ जा रहे हैं? जब रातें अल्लाह से दूर होती हैं ना, तो फिर नस्लें भी अल्लाह से दूर हो जाती हैं। आज हमारे अंदर जो बेहिसी तारी है, आज जो हमारे हालात हैं ऐसे, उसकी वजह क्या है कि आज हम अपनी रातों को वीरान कर दिया? कभी गौर तो करके देखिए कि जब मगरिब का वक्त होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हुक्म ये मिलता है कि मगरिब के वक्त, जब बिल्कुल मगरिब की अजान का वक्त होता है, तो बच्चों को भी बाहर ना लाओ, छोटे बच्चों को खासतौर पे। क्यों? कि शयातीन गुजरते हैं, खाना होता है उनके हाथों में कुछ, तो जो चीज़ बाहर होती है तो उसको नुकसान दे सकते हैं। हम बड़े तो दुआएं पढ़ लेते हैं, कुल पढ़ लेते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो बच जाते हैं ना, वो नहीं बचते। ये वक्त कौन सा होता है? आसमान से यानी बलाओं के गुजरने का। फिर उसके बाद आप देखिए कि फरमाया कि ईशा की नमाज के बाद सो जाओ, ऐसे ही है ना। आपने फरमाया कि अपने बर्तनों के मुंह बांध दो, यानी पानी खुले घड़ों में और बर्तनों में होता था तो लोग उस पे कपड़े बांध दिया करते थे, क्योंकि रात को ऐसी चीजें इधर आती हैं। और जब दूसरा पहर शुरू होता है रात का, तो उस वक्त आसमान से रहमतें उतरती हैं। अब हमारा हाल क्या है कि जिस वक्त बलाओं के उतरने का वक्त होता है, तब तो हम फुल एक्सपोजर के साथ महफिलों की जीनत बने होते हैं, ऐसी के निगाह भी ना टिके किसी की। इंसान तो इंसान, जिन्नात भी देख के आशिक हो जाए। और जब रात को रहमतों के नजूल का वक्त होता है, तो हम चादरें तान के सो जाते हैं। फिर रहमतें कहाँ से आए? फिर बरकतें कहाँ से आए? आज हम कहते हैं बच्चे रोते बहुत हैं, कभी आपने गौर किया क्यों रोते हैं? आप उनको हो सकता है कि ऐसे हुलिये में बाहर ले जाते हैं कि वो ऐसी चीजों की वजह से मुतासिर हो जाते हैं। हमारी सारी पार्टीज, हमारी सारी शादियां, हमारी गैदरिंग्स कब शुरू होती हैं? अफसोस की बात है क्या, यहाँ तो शायद जल्दी शुरू हो जाती हो, हमारे मुल्कों में तो 10 बजे कह के 12 बजे शुरू होती हैं। कैन यू इमेजिन दिस? यानी मुझे किसी ने खबर दी, और सच्ची खबर दी, कि शादी थी हमारे खानदान में, बात हुई, मैंने कहा अच्छा कैसा रहा, ठीक था? कहेंगी हाँ अच्छा था, बस बारात थोड़ी लेट आई थी। तो मैंने कहा कितनी लेट आई थी? आप सोच सकते हैं जो जवाब उन्होंने दिया होगा। कह रही कि रात 2 बजे बारात पहुंची थी हॉल में। मैंने कहा जी? कह रही नहीं, हाँ वैसे टाइम भी तो 12 बजे का ही दिया हुआ था, 2 बजे पहुंची। तो मैंने कहा वापस कब आए? कहने लगी को 3 बजे के बाद का वक्त था जब हम आए। अब आप बताइए, जो सुबह के जागे होंगे वो 3-4 बजे आके सोए होंगे ना, फजर कहाँ गई होगी? ये कल्चर है, ये बातें नहीं है। आप इसको ये मत कहा करें कि ये इबादत अलग चीज है और हमारी जिंदगी दूसरी जगह पे है। आपने अगर अपनी जिंदगी से कोई खैर लेनी है ना, तो रातों का कुछ हिस्सा जागना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लम रातों को उठ उठ के रब से रहनुमाई लेते थे। अब देखिए कि जो लोग रहनुमाई के मनसब पे फायज होते हैं ना, या होना चाहते हैं, उनको तो मस्ट है, फर्ज है, उनका कंपल्सरी पेपर है ये कि रात को रब से इंस्ट्रक्शंस लेके सोएं कि अल्लाह कल के दिन के काम मैंने क्या करने हैं। आपको पहले भी शायद ये बात सुनाई थी कि अल्लाह के नबी सल्लम के साथी जब मैदान जंग में जाते थे, तो दिन भर वो जंग करते थे, लड़ते थे, और रातों को वो तहज्जुदों में रब के साथ कन्वर्सेशन करते थे। एक शख्स था, कुब कुलास उसका नाम था, रोमी फौज शायद किसी सेक्टर पे जंग हो रही थी, तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैं मुसलमानों के लश्कर की जरा खबर तो लेके आऊं, ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उसने आके मुसलमानों के लश्कर का चक्कर लगाया, रात बसर की, और आपको बताया कि वापस जाके जो उसने गवाही दी थी, कहने लगा कि हम फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम फिल लैल, कि ये दिन में फिपरे हुए घोड़े बन जाते हैं, घुड़सवार हैं, जो घोड़ों पे बैठ के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालते हैं, और रातों को राहिब बन जाते हैं। मैंने देखा कि लश्कर इस्लाम का एक एक सिपाही तहज्जुद में रब को कुरान सुना रहा है। कहता मैंने देखा कि लश्कर इस्लाम में से शहद की मक्खी की बिन बनाहट की आवाजें आ रही थी। जब मैंने गौर से सुना तो मैंने देखा कि सिपाही अपनी अपनी जगह पे खड़े तहज्जुदें पढ़ रहे हैं। यही चीज अगले दिन फिर कटवाने पे जान जाती है, बाजू कटते हैं, हाथ कटते हैं, तकलीफ नहीं होती। क्यों? कि वो रात को अपने लिए एक हिफाजत के इंतजाम कर चुके होते हैं। बिन बनाहट की आवाजें आती थी उनके लश्करों से। और जरा सोचिए कहाँ गए हुए हैं, पिकनिक पे गए हुए, जिहाद पे। सारा दिन जख्म लगते थे, चोटें पड़ती थी, थकते थे। हम अपने ही कामों में कहीं चले जाएं, सारा दिन बिजी रहे, रात देखिए बिस्तर पे पड़ेंगे, होश ही नहीं होती। लेकिन अगर वाकई हकीकत में अल्लाह का कुर्ब पाना है तो रातों को जिंदा करने पड़ेगा। कितने वाकयात मेरे जहन में इस वक्त खुल रहे हैं कि जो तारीख से आपके सामने रखे जा सकते हैं कि कैसे उनका ताल्लुक था। आज हमारे हमारी नस्लें क्यों हमारे हाथ से जा रही हैं? आज क्यों बिगड़ गए? हमारे रब से ताल्लुक कट गए। एक माँ तड़प के तहज्जुद में दुआ तो मांगे, इमाम बुखारी की माँ ने मांगी थी। जब बच्चा पेट में था तो कहा, अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा होगा इसको तेरे नबी की हदीसों के लिए वक्फ करती हूँ। पहले से मन्नत मान ली थी। अल्लाह अकबर। और बच्चा पैदा हुआ तो आंखें ही नहीं है। और फिर क्या हुआ? वही माँ थी जिसने रब के सामने खड़े होकर शिकवा नहीं किया, रोई नहीं, रब के सामने बात कर दी थी कि अल्लाह मैंने तुझसे एक चीज मांगी थी, तेरा शुक्रिया, तूने वो चीज मुझे दे दी, लेकिन उसकी एक चीज तेरे पास रह गई। अब बता वो किन निगाहों से तेरे नबी की हदीस देखेगा, वो किन निगाहों से तेरे नबी की बातों को जमा करेगा। इतना तड़प के वो मां रोई कि जब बच्चे के रोने की आवाज आई, देखा तो बच्चे को आंखें मिल चुकी थी। और फिर जो इमाम बुखारी को आंखें मिली थी, चांद की रोशनी में बैठ के, ये आपके लिए बुखारी लिखी है उन्होंने। कोई मर्करी लैम्प्स नहीं थे, कोई बल्ब नहीं थे, कोई नाइट लैम्प्स नहीं होते थे। चांद की रातों में बैठा करते थे और रातों को लिखते थे। ये इल्म का वर्षा जो हम तक पहुंचा, ये रातों की मेहनतों का नतीजा है। आज भी अगर आप कहें कि दिन भर में ये काम हो जाएंगे तो नहीं होंगे। बातें तो बहुत हैं लेकिन सिर्फ मुहासबे की जरूरत है। अगला वाक्या देखते हैं आपकी जिंदगी का। एक शख्स ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब बात जो आपने देखी हो वो सुनाए। यहाँ ये भी अंदाज देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम की बीवियों से लोग आके आपके ऐसे मामलात पूछा करते थे जो दूसरों से ओझलते। ये भी मोहब्बत की बात है ना। आप रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आपकी कौन सी बात अजीब ना थी? फिर फरमाया, एक शब आप उठे और मेरे पास बैठ गए। फिर फरमाने लगे, मैं रब्बे ताला की इबादत के लिए जाता हूँ। चुनाचे आप नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू किया, यहाँ तक के आंसू सीने मुबारक तक बहने लगे। फिर रुकू फरमाया, इसमें भी रोते रहे। फिर खड़े हुए, इसमें इसी तरह रोते रहे। और इसी तरह आपकी नमाज जारी रही, यहाँ तक कि बिलाल रदी अल्लाहु अन्हों ने फजर की अजान दी। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। अल्लाह ताला ने आपके तमाम गुनाह बख्श दिए हैं। इस पर आपने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सही बुखारी की ये रिवायत है। ये है उस हस्ती की इबादत और रियाजत का हाल जो सरदारे दो जहां बनकर तशरीफ लाई। गौर करें वो लोग के जो जरा सी दौलत, मसरूफियत और ओहदा मिलने से नवाफिल तो दूर की बात है, फराइज तक से बेपरवाह हो जाते हैं। कुछ कहेंगे आप लोग इस पे? खोल दें टेक्स्ट इधर भी और आप लोग भी शेयर कीजिए। है कोई हमारी निस्बत उनके साथ? इससे क्या पता चलता है कि इबादत जो है वो सिर्फ गुनाहों के कफारे नहीं होते बल्कि नेमतों का शुक्राना भी होता है। अफला कुन अब्दन शकूरा, के मैं नेमतों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। जरा सोचें, आज हमारे पास नेमतें ज्यादा हैं या उनके पास ज्यादा थी। हम आज अल्लाह ताला की ज्यादा नेमतों को पा के बैठे हुए हैं या वो ज्यादा नेमतें लेते और देते थे। जिनको कई दो दो महीने तक रोटी नहीं मिलती थी उनकी इबादतों का ये हाल था, आज हमारे पेट ज्यादा भरे इसीलिए इबादत की फुर्सत ना रही, इसीलिए इबादत का मौका ना मिल सका। सोचना पड़ेगा कितना शुक्र है जिंदगी में, कितनी कहानी है। जी अख्तर, आप कुछ कहेंगे? इधर ही आ जाइए।
अस्सलामुअलैकुम। बस इंसान को अपनी खुशियों में अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए। हम तो पहले अपनी जैसी मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है तो पहले तो हम अपनी नमाज देर से होती है, फिर अपनी कुरान जो भी पढ़ते हैं वो हमसे छूट जाता है। तो हमको चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें और हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहें। जी,
आप देखिए कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी ना, जब तक हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं लाएंगे, इसके बगैर तो बात नहीं बनती। ये लिखती हैं कि फुल स्टमक मेक्स वन इनएक्टिव, सच है। और मैंने तो यही देखा है कि हमारे पेट बहुत भरे हुए हैं। आप अभी आराम से बैठे सुन रहे हैं, बोल रहे हैं ना, अभी ब्रेक दूं और चलें कुछ खा लें, जाएं समोसे मंगा के खा लें, पराठे खा लें, आप देखें कि अगला पीरियड आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत पेट भरता है तो नींद आने लगती है, स्पीचलेस, वी कैंट कंपेयर आवर सेल्फ विद देम, आई डिड नॉट गेट एनफ स्लीप एट नाइट एंड आई एम फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ आफ्टर लिसनिंग टू वर्ड यू सेट, वी ऑल टाइम फील टायर्ड, ट्राइड अलस गिव अस अल्लाह गिव अस स्ट्रेंथ टू फॉलो हिज पाथ। हमारे पास जितनी नेमतें हैं उतने ही दूर हैं, इसलिए सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं मिल रहा। सही, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार देखकर बहुत अफसोस है खुद पर, कि जो हस्ती इतनी इबादत गुजार हो और आंसू बहाती थी हम, तो हम कहाँ उसका वो काम कर सकते हैं। वी टेक एवरी थिंग फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइफ एंड दैट इज वाई वी डोंट शुक्र ऑन ऑल द नेमत दैट वी हैव। वी हैव सो मैनी नेमास अल्हम्दुलिल्लाह, डज दैट अल्लाह ताला इज नॉट हैप्पी फ्रॉम अस? ऐसा नहीं है, नेमते हैं लेकिन साथ साथ शुक्र है तो अल्लाह देता है। ला इन शकर तुम ला अजीद अन्नकुम, नेमते हैं और उसको अगर अल्लाह की रजा में लगा रहे हैं तो अल्लाह उसको भी बढ़ाता है, बल्कि ना शुक्रों से नेमते छिन जाती हैं। हम सोचते हैं अल्लाह के शुक्र गुजार बनेंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, हराम छोड़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं छोड़ते। ये नहीं पता कि हराम छोड़ेंगे हलाल पे इक्तफा करेंगे अल्लाह हलाल बढ़ा देगा। हम खुद अपने लिए चूज करते हैं सोर्स अपना। देयर इज साइंस टू इट, देर इज सेंस टू इट एज ऑल दी ओके ठहरिए, असल में वो थोड़ा जल्दी में मुश्किल लगता है। देर इज साइंस टू इट एज ऑल दी ऑक्सीजन गोज टू हजम द फूड, हजम द फूड एंड द ब्रेन हैज लेस एंड वी फील टायर्ड वेन वी ईट टू मच। सही, यानी कि बात मुझे समझ आ गई है कि जब हम बहुत खाते हैं तो वो फूड सारा हजम होने में ऑक्सीजन चली जाती है तो फिर हमें ड्राउजीनेस फील होती है। हमको आज जितनी नेमतें मिलती हैं उतना ही उतनी सहूलतें मिलती हैं तो वक्त लोगों को, यानी उनके नेमतें कम थी तो हम वो इबादतें ज्यादा करते थे। आई लर्न लॉट एंड मेक प्रॉमिस विथ माई सेल्फ, कि मैं भी अमल करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। अब पता चला है कि जन्नत पाने को आसान नहीं सीखा, मेहनत करनी पड़ेगी। सही, बिल्कुल सही। वी एक्ट एज इफ वी डिजर्व ऑल द ब्लेसिंग्स, आवर इग्नोरेंस मेक अस नॉट टू। सही कह रहे हैं आप सब। चलिए आगे चलते हैं, फिर बाकी चीजें बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। अगला देखिए वाक्या। हजरत औफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिकाब था। हम रिकाब मतलब उनके साथ बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की, वजू फरमाया और नमाज में खड़े हो गए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गया। आपने फातिहा के बाद सूरत बकरा शुरू की, जो आयत रहमत की आती, तो आप इस जगह देर तक रहमत की दुआ फरमाते। आप देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते, और जो आयत अजाब की आती, आप इस जगह देर तक मगफरत और अजाब से पनाह की दुआ मांगते रहते, यहाँ तक कि पूरी सूरत ख़त्म हो गई। फिर रुकू किया और इतना लंबा रुकू किया कि जितनी देर क़याम फरमाया था। और रुकू में सुबहान जिल जबरूती वल मलकूती वल किब्रिया इवल अजमती पढ़ते जाते। फिर इतना ही लंबा सजदा किया। फिर दूसरी रकत में सूरत आले इमरान पढ़ी, और इसी तरह एक एक रकत में एक एक सूरत पढ़ते जाते। इस तरह 4 रकतों में 6.25 सुपारे पढ़े, 6 and 1/4। बस मरतबा आपने एक रकत में सूरत बकरा, आले इमरान और सूरत निसा 3 सूरतें पढ़ी, ये भी तकरीबन 6.25 पारे हैं। आपका इतना तवील क़याम इसलिए होता था कि इसमें आप पर एक कैफियत तारी हो जाती थी, और आप एक ख़ास हज़ महसूस करते थे। इतना ख़ास और लुत्फ़ शायद किसी दूसरी चीज़ में ना हो, यानी हिस्सा मालूम होता है, यानी आप उसमें इंडल्ज हो जाते। वाकई स्पीचलेस है ना बात। आज फास से फास कारी की भी किरत हम सुने तो सूरत बकरा जो है, मुझे लगता है कि इमाम सुदेस और शुरेम जो है ना, ये सबसे ज्यादा तेज पढ़ते हैं। तो फास्टेस्ट भी अगर हम देखें तो 90 मिनट से कम पे नहीं होती, 1.5 घंटे की होती है। बहुत तेज पढ़ते हैं ये, वरना आप देखिए कि हुज़ैफ़ी हैं या दूसरे हैं तो उनकी 2 सीढ़ी से ऊपर पे ये होती है। जरा सोचिए कि कितने घंटे लगते होंगे। क्या ये इंसान नहीं थे? इंसान थे, लेकिन कौन सी चीज उनको इस पे माइल करती थी, खो जाते थे उसमें। कुछ लोग हैं वो 1 घंटा तफसीर सुन के बोर होने लगते हैं, कोई आधा घंटे में क्लास से उठना चाहते हैं, लेकिन आप इस चीज को फील करते हैं ना जो यहाँ बैठते हैं? 3 4 घंटे तो आराम से बैठ सकते हैं ना आप लोग। जी नाजली, आप बताइए। इस वक्त यहाँ जो हमारी क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे, हम 5 घंटे लेते हैं। यानी ये लोग 9 से 2 हमारे हिसाब से मंडे थर्सडे और फ्राइडे आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बजे भी आपके चेहरों पे थकन नहीं देखती। ऐसे ही है ना, कुछ है तो आप बता सकते हैं, और मुझे भी नहीं महसूस होता, वक्त का पता ही नहीं चलता। जो बाहर बैठे होते हैं उनको लगता होगा कि बड़ा लंबा वक्त है, लेकिन जो उस माहौल का हिस्सा बन जाता है फिर वो तो उसी के अंदर खो जाते हैं ना। ये खो जाने वाली कैफियत होती है, बोझ नहीं लगता। आप 3 घंटे मूवी देखते हैं ना, और जरा देखिए जिसको इंटरेस्ट ना हो वो 10 मिनट में बोर हो जाएगा, फर्क है ना। तो असल फिर चीज क्या है, इंटरेस्ट पैदा करना अपना। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने अहलो अयाल में मशगूल होते और अजान शुरू हो जाती तो फौरन उस वक्त सबको छोड़ छाड़ कर नमाज के लिए चले जाते, जैसे किसी से कोई ताल्लुक ही ना हो। ये थी आपकी निगाह में नमाज की अहमियत और इबादत का मुकाम। क्या आज हम लोग सीरत नबी के इस पहलू से कोई सबक लेंगे और आपके इत्तेबा की कोशिश करेंगे? अफसोस का मुकाम है कि ज्यादा मुसलमान नवाफिल तो रहे अलग, फराइज तक की अदायगी में गफलत बरतते हैं, और जो फराइज अदा करते हैं वो खुशू खुजू तमानियत और एतदाल غرض کسی بات کا خیال نہیں رکھتے اور نماز کے سنت طریقے سے استغنا برتتے ہیں. یہ مشکل لفظ پہلے لکھیے. خشوع کہتے ہیں دل کی عاجزی کو, دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس ہو. خضوع کہتے ہیں جسم کے اعضاء کے اوپر اللہ کی خشیت کا رنگ آئے, یعنی حرکت نہیں ادھر, یعنی ظاہر سے بھی پوسچر سے بھی دیکھے کہ انسان کو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. تمانیت اطمینان سے ہے, پیسفل. اعتدال کہتے ہیں بیلنسڈ کو, اور استغنا کہتے ہیں غنی ہونا, یعنی ڈونٹ کیئر, پرواہ نہیں اس کی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہوتے اور نماز کا وقت آتا اور اس طرح اٹھ جاتے جیسے جانتے ہی نہیں. ذرا لکھیے تو صحیح اپنے لیے, ہماری کتنی نمازیں لیٹ ہوئیں اور قضا ہوئیں ہماری فون کالز کی وجہ سے. مہمان آ جائیں تو نماز لیٹ, انٹرنیٹ پہ چیٹنگ شروع ہو جائے تو نماز لیٹ. اپنا حساب خود لینا ہے ہم نے. صحیح مسلم میں ابو عبداللہ خزیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی. میں نے خیال کیا کہ 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے, مگر آپ پڑھتے ہی گئے اور سورت بقرہ ختم کر کے سورت نساء شروع کر دی. پھر میں نے خیال کیا کہ شاید جس سورت ختم کر کے رکوع جائیں گے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء ختم کر کے سورت آل عمران شروع کر دی. پھر قرآن مجید نہایت ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتے رہے. جس آیت میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو تسبیح کہتے, جہاں سوال یا دعا کا موقع ہوتا تو دعا مانگتے. سورت آل عمران ختم کرنے کے بعد آپ نے رکوع کیا اور اس خشوع سے کیا کہ وہ رکوع بھی قیام کی مثل ہو گیا, یعنی بہت لمبا ہو گیا. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور رکوع کی طرح دیر تک قیام کیا, اس میں دعائیں پڑھتے رہے. پھر سجدہ کیا, آپ کا سجدہ بھی قیام کی طرح طویل تھا. الغرض یہ ہے مختصر نقشہ آپ کی نماز اور عبادت کا. کیا اب کوئی ایسا عابد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا نمونہ پیش کر سکے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے, اور خاص طور پہ وہ جن کا نام عابد ہے یا عابدہ ہے. اور ایک ایک رکعت میں 5 5 6 6 پارے تلاوت کرے, اور رکوع اور سجود بھی اس خشوع و خضوع سے کرے کہ ان کی طوالت بھی قیام ہی کی مثل ہو جائے. اللہ اکبر. کچھ بھی کہنے کو دل نہیں چاہ رہا میرا, دعا مانگنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے, ہمیں بھی عبادت میں لذت ملے. آپ کو پتہ ہے کہ جب عبادت میں لذت ملتی ہے نا تو پھر ہی یہ ممکن ہے. بورنگ دل سے یا اچکتے ہوئے دل کے ساتھ انسان جم نہیں سکتا. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو نا اور آپ کا دھیان کسی دوسری طرف ہو, ذرا میں دیکھوں ادھر کیا ہو رہا ہے, اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے, دوسرے گھر میں لوگ کیا کر رہے ہیں, اچھا ذرا میں باہر بیچ میں جا کے وہ کام کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. ایون آپ اپنے گھروں میں یہ سنتے ہوئے اٹھ اٹھ کے بیچ میں جا کے دیکھیں نا, ذرا چولہے پہ کھانا رکھا ہے چمچہ لگاؤں, اچھا ذرا ٹیلی فون سن لو, آپ اس طرح جذب نہیں کر سکتے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ کتاب قلم ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں جیسے کلاس روم میں بیٹھتے ہیں, جتنا وہ کلاسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ دوسرے نہیں اٹھائیں گے. دوسروں کو انفارمیشنز مل جائیں گی چلتے پھرتے بھی یا بعد میں ریکیپ میں, لیکن وہ روحانیت جو ایک لائیو کلاس میں بیٹھ کے آپ پاتے ہیں, ایک استاد کے جذبات آپ کے سامنے آتے ہیں, وہ بعد میں نہیں ملتے. ورنہ تو سارے ہی لوگ بعد میں سارا کچھ سیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کہ آپ ہر آیت پہ دعا بھی مانگتے تھے, یہ بھی اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گی کہ آپ عذاب کی آیتیں آتی تو کیا کہتے, اللہم لا تجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا. اور جب जन्नत की बातें, रहमत की बातें आती तो अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, ए अल्लाह हमें इनमें कर दे। ये क्या बताता है कि जब इंसान किसी चीज को समझता है फिर ही मांगेगा ना। हम कितनी दफा ऐसा मांगते हैं, वजह क्या है कि हमें तो पता ही नहीं चलता। इससे पता चलता है कि कुरान समझ आता हो फिर जो नमाजों में मजा आता है वो इसके बगैर आ नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हो, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हो कहते हैं कि मैंने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रात नमाज पढ़ी। आपने क्याम फरमाया कि मैं घबरा गया और कुछ और ही इरादा करने लगा। लोगों ने पूछा वो क्या, आपने फरमाया कि बैठ जाऊं या आपको छोड़कर भाग जाऊं। यानी नबी सल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इतनी लंबी लगी कि इनका दिल चाह रहा मैं बैठ जाऊं। मुझे तो हंसी इसलिए आ गई कि मुझे बच्चे याद आ गए, अक्सर तरावियों में माए साथ खड़ा करती हैं और जो ही जरा वो तिलावत शुरू होती है तो वो पीछे से भागते हैं, और बाज बेचारे जो पीछे नहीं पढ़ रहे होते वो उसको इशारा करते हैं आ जाओ और वो बीच में से निकल के भाग जाते हैं ना। और नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो खड़े नहीं हो पाते ना बेचारे। अब ये भी बच्चे ही थे ना और ये बहुत छोटी उम्र के सहाबी थे, तो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भाग जाऊं। अच्छा देखिए यह मजे की बात कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे यानी भागना चाह रहा हूँ, ये लोगों ने उनसे कुरेदा। उन्होंने अपनी बात कितने खूबसूरत तरीके से की कि मैं तो कुछ और ही इरादा करने लगा। अच्छा अब साथी अच्छे थे ना बोलते, पूछते पूछा नहीं, बताओ पहले तुम क्या सोच रहे थे। इससे पता चलता है कि कभी कभी दोस्त जो होते हैं वो इंसान के पोल भी खुलवा देते हैं, कहा छोड़ जाऊं या भाग जाऊं। अल्लाह अकबर। एक जलीलुल कदर सहाबी नबी सल्लम के मुजाहदे और रियाजत की ताप नहीं ला सकता और चाहता है कि मैं अल्लाह के नबी को छोड़कर अलग नमाज पढ़ लूं ताकि थक न जाऊं, मगर आप हैं कि खड़े हैं, न थकावट महसूस होती है न घबराहट पैदा होती है। मालिके हकीकी के साथ राजो नियाज में मसरूफ हैं और इबादत के मजे ले रहे हैं। अल्लाह हमारी इबादत में भी मजा दे दे। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम रात को इस कदर क्याम फरमाते थे कि आपकी पिंडलियों पर वरम आ जाता था, यानी स्वेलिंग शुरू हो जाती थी, सूज जाती थी आपकी पिंडलियां। पिंडली क्या होती है, ये टांगों का जो नीज के करीब का जो हिस्सा होता है। जब आपसे इसके बारे में अर्ज किया जाता कि आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको तो जन्नत की बशारत और हौज़े कौसर की खुशखबरी सुना दी तो आप फरमाया करते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं। अल्लाह हमें भी शुक्र गुजार बना दे, हमारे पास तो नेमतें उनसे बहुत ज्यादा हैं। रमजानुल मुबारक की इबादत। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा होता तो आप सारी सारी रात इबादत करते रहते और अपने घर के लोगों को भी बेदार करते और तहबंद मजबूत बांध कर इबादत में मशगूल हो जाते। तहबंद मजबूत बांधना क्या है, यानी एक ये मुहावरा भी है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं फलाने कमर कसली। आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप कहते हैं ना बस मैंने अब इस काम पे कमर कस ली है। और अगर फिजिकल भी मुराद लें तो आप देखिए कि उस दौर में ढीले ढाली चादरें होती थी, उन लोगों के पास कोई इस तरह हमारी तरह सिले हुए कपड़े नहीं थे, तो कहीं इबादत में या इस खुशियों में कपड़ा ढीला ना हो जाए उसको खूब अच्छी तरह टाइट कर लेते थे। इबादत की तरगीब यानी रगबत मोटिवेशन। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक रात नबी सल्लम इनके घर में तशरीफ ले गए और मियाँ बीवी यानी अली रजी अल्लाह अन्हु और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि तुम नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ते। हजरत अली जो ऐन आलमे शबाब में थे यानी यंग थे, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लम हमारी जाने अल्लाह के हाथ में है, जब वो उठाना चाहेगा उठा देगा। जवानी में ऐसे जुमले निकल जाते हैं ना मुंह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर वापस लौट गए और नाराजगी की वजह से कोई जवाब ना दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना आप ये आयत पढ़ते थे और रान पर यानी अपनी थाइस पर हाथ मारते जाते, फिर जैसे कोई अफसोस करता है और क्या कहते, वकान अल इंसान अक्सर शय इन जदला, कि इंसान अक्सर चीजों में बहुत ही बहस और झगड़े करने वाला है। ये कुरान पाक की आयत है जो नबी सल्लम ने उस मौके पे पढ़ी। इन वाक्यात से मालूम हुआ कि नबी सल्लम ना सिर्फ खुद ही इबादत में मसरूफ रहते थे बल्कि दूसरों को भी इबादत की रग़बत दिलाते थे। अल्लाह ताला करे कि हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सी इबादत का ज़ौक व शौक़ पैदा हो जाए ताकि हम भी नफली नमाज की हलावत से आशना हो जाए। हलावत कहते हैं मिठास को, स्वीटनेस, और इससे हमारी दोस्ती हो जाए। क्या सीखा इस आयत से, इस वाक्य से क्या सीखा, कोई बताएगा आप लोगों में से? अल्लाह के नबी सल्लम ने ये किससे पूछा था कि तहज्जुद पढ़ते हो कि नहीं, दामाद से। आज हम पूछ सकते हैं अपने दामादों से ये बात, दामाद यानी सन इन लॉ से। शादी हो चुकी है, बेटी मियाँ के घर जा चुकी है और सुसर आके पूछ रहे हैं कि बताइए क्या आप तहज्जुद पढ़ते हैं। ये नहीं कि फर्ज की बात है, नफिल की बात। आज ऐसा है, हम तो रिश्ता तय करते वक्त नहीं पूछते कि लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं, खाम खा बाद में लड़की को बातें ना सुननी पड़ जाए। इससे क्या पता चलता है कि शादी के बाद भी बच्चों की दीनी तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप पे है। हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है, बड़ा ही गैर मारूफ जुमला है, अच्छा नहीं लगता मुझे, और वो क्या है, माँ बाप कहते हैं हमारे घर से तो अच्छी गई थी, हमने तो बड़ी अच्छी ओढ़ी पहनी भी भेजी थी, अब बाहर जाके वहां शादी के बाद जो मर्जी करे, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, हमारे घर से बच्ची गई थी तो नमाज पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती तो ना सही, अब अगर अपने लिबास का ख्याल नहीं रखती तो ना सही, ये दुरुस्त नहीं है, ये जिम्मेदारी आखिर तक जाएगी। नबी सल्लम बेटी को भी ये बात कह रहे हैं और दामाद को भी कह रहे हैं, और फिर आप देखिए कि दामाद की ये बात सुन के वहां से नाराजगी से उठ गए। इससे क्या पता चलता है कि अगर इतने हसास रिश्तों के अंदर भी अगर कोई बात बुरी लगे तो उनको एहसास दिलाना चाहिए, हम पी जाते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि खुदा ना खास्ता हम अल्लाह ताला से उतना नहीं डरते जितना दामाद से डरते हैं। अल्लाह ताला अच्छे दामाद भी दे, और अच्छे दामाद एक रात में नहीं बन जाते, पहले से ही इसका इंतखाब किया जा सकता है अच्छे तरीके से। चलिए, अल्लाह के नबी सल्लम का अक्स सहाबे कराम में भी था। सहाबे कराम नबी सल्लम के रंग में रंगे हुए थे, ये मुहावरा है, यानी जैसा आप काम करते थे वैसे ही वो करते थे। आपकी इबादत को देखकर उन्होंने इबादत शुरू कर दी, इनकी इबादत में भी गायत दर्जे का खुशू था, यानी बहुत ज्यादा खुशू था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाहु अन्हो जब क्याम करते तो इन्हें दुनिया व माँ फीहा, माँ फीहा क्या है, माँ का मानी क्या होता है, कौन बताएगा, लफ्जी तर्जमा याद करने वाले किधर है जी, जो माँ जो, ठीक है, और फी का मानी क्या होता है जी, आप बताएं सलवा में, और हा क्या होती है, आप किसका बुजी अख्तर, आप बताइए, हाँ हा किसकी जमीर है, या यूहन्नास, हाँ हा वो मोनस की जमीर है, तो माँ फी हा जो इसमें है, किसमें है, कौन बताएगा, हा इधर मोनस क्यों आई है। अब मैं थोड़ा आपको जगा रही हूँ, या तो परेशान हो जाएंगे या जाग जाएंगे जी। अमरीन, दुनिया, शाबाश, वेरी गुड, आप इसका अंदर के पूरे शौक से सुन रही हैं, यानी दुनिया व माँ फीहा, दुनिया मुअन्नस है अरबी में, हाँ जी, दुनिया व माँ फीहा की खबर ना रहती, यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसकी खबर ना रहती। मसलन क्या कुछ है दुनिया में, जरा बताएंगे कुछ चीजें, दुनिया में क्या कुछ है जी, आप काम अपने, गाड़ियां, दुनिया, हमारे कपड़े, हमारे घर, हमारी जॉब, शॉपिंग, कुछ भी, दुनिया व मा फीहा, ये लफ्ज बड़ा मुझे प्यारा लगता है, ये बड़ी हदीसों में आता है कि जन्नत में एक कोड़ा रखने के बराबर अगर जगह मिल जाए किसी को तो खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में, वो सबसे प्यारा है। इन्होंने लिखा है किड्स, सही, अब आप देखिए इन सब से बेनियाज होते हैं ये। इन्होंने बड़ा अच्छा वैसे नुक्ता उठाया कि नमाज में होते हैं तो उनको दुनिया व माँ फीहा की खबर नहीं रहती तो बच्चों की भी होश नहीं रहती। आज हमारा हाल क्या होता है, नमाज में भी सोच रहे होते हैं कि बच्चे ठीक तो हैं कि नहीं। अब बकौल मोहम्मद बिन मुनकदिर, वो इतना तवील क़याम करते कि लकड़ी मालूम होते, यानी इतनी देर खड़े रहते थे कि लोग देखते कि ये एक लकड़ी है, कोई पिलर है। यानी आप नमाज में इस कदर मुनहमिक, मुनहमिक कहते हैं इनहमाक से, यानी बहुत मसरूफ होते थे या बहुत उसके अंदर आप उसी माहौल के अंदर अपने आप को गर्क कर लेते थे, आप इस कदर मगन हो जाते कि आपको दुनिया की कुछ खबर न रहती। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान और अली रजी अल्लाह तआला का करीब करीब यही हाल था। कुतब हदीस में इनकी इबादत का हाल मजकूर है, यानी उसका जिक्र है। बेहकी और अबू दाऊद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजवे से वापस तशरीफ ला रहे थे और एक जगह क्याम किया और फरमाया, आज की शब कौन पहरा देगा? अम्मार बिन यासिर और इबाद बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हुमा ने ये जिम्मा लिया। दोनों ने आधी आधी रात बांट ली। अंसारी सहाबी के जागने की बारी थी, इसने नमाज की नियत बांध ली। दुश्मन ने दूर से तीर फेंका जो इन्हें लगा, मगर नमाज जारी रखी। फिर दूसरा, फिर तीसरा तीर आया और जिस्म में पेवस्त हो गया, और आप रजी अल्लाह अन्हो हाथ से तीर निकालते रहे मगर नमाज न तोड़ी, और अपने वक्त पर इत्मीनान से नमाज खत्म की। साथी भी बेदार हो गया, यानी उठ गया। इसे बहुत रंज हुआ और कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? उन्होंने कहा, मैंने एक सूरत शुरू कर रखी थी, मेरा जी न चाहा कि इसे खत्म करने से पहले रुकू करूं, और वो सूरत सूरतुल कहफ थी, और मैंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए नमाज खत्म की है। जिम्मेदारी का ख्याल ना होता तो और दराज करता। ये वाक्य मैं आपको पहले सुनाने लगी थी, जब शुरू में सुना रही थी ना बातें, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी आ गया। गजवे से वापस आ रहे हैं, रात को मुसलमान फौज का पहरा दे रहे हैं, दिन के भी थके होंगे, रात भी, फिर भी नहीं कहा कि चलो कैसे रात गुजारे, कुरान पढ़े। एक को कहा तुम सो जाओ तो मैं जागता हूँ, बारी बारी जागेंगे। ये भी अच्छी तंजीम सिखाई, अगर दोनों जागते रहते तो दोनों के सोने का डर था। फिर उसके बाद देखिए कि जाग रहे हैं तो अब करें क्या, चलो कुरान पढ़ लो, कोई वॉकमैन ले जाते साथ, कोई आईपॉड होता जेब में। अमूमन जब हमें रातें जागनी पड़ती हैं तो क्या करते हैं, किसी मेहमान ने आना हो और आधी रात को एयरपोर्ट जाना हो तो लोग कहते हैं चलाओ कोई मूवी ताकि 3 घंटे नींद ना आए और फिर चलेंगे। मैंने खुद ये बात सुनी हुई है लोगों से कि जागना है कोई चीज़ देखो ताकि जागे। ऐसा नहीं लगता कि उनका उनकी हिरस नहीं खत्म होती थी नेकियों की, इतनी हवस थी उनको नेकियों की कि जिसके लिए वो कभी अपने आप को मुतमईन नहीं पाते थे। ये कौन शख्स कर सकता है जो अपनी नेकियों पे अपने आप को मुतमईन ना कर ले? हम थोड़ी सी नेकी करके ना यकीन करें अंदर से थपकियां आ रही होती हैं, खैर है ना, अब इतनी भी बड़ी बात थोड़ी है। अब देखो, अब तुम कुरान भी पढ़ रहे हैं, देखो अब तो हमारा सारा दिन कुरान के साथ जाता है, और अब देखो हम तो सुनते ही रहते हैं, कानों में आवाजें पड़ती रहती हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि किस तरह से नेकियों की तड़प रखने वाले वो लोग थे। और आपको पता है कि ये जो उन्होंने सूरत शुरू की थी और उनको नहीं उठाया, और ये जो आखिरी जुमला बोला कि अगर जिम्मेदारी का ख्याल ना होता तो आपको अभी भी ना उठाता, इससे क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि अब मेरे ऊपर इतने तीर लग चुके हैं कि करीब था कि मैं मर जाऊं, और जिम्मेदारी जो लश्कर की हिफाजत की हमारे ऊपर दी गई थी, मैं उसमें खयानत नहीं करना चाहता था। यानी अभी भी अपनी जान के लिए नहीं उठाया कि मेरी मदद करें या मेरी हिफाजत करें, बल्कि इसलिए कि अब मैं तो मरने वाला हूँ, आप अब लश्कर इस्लाम की हिफाजत करें। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का अक्स, जो आपके सहाबा में भी बदरजाए कमाल नजर आता था। दुर्रे मंसूर एक किताब का नाम है, ये इमाम हाकिम की। दुर्रे मंसूर में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की आंख में पानी उतर आया, जिसे हमारे डॉक्टर्स नजुलुल माँ कहते हैं। डॉक्टर्स आए और इलाज करना चाहा और कहा कि 5 दिन तक आपको रुकू और सजदे से परहेज करना होगा, वरना आपका इलाज मुश्किल है। आपने फरमाया, ये कभी नहीं हो सकता, ना मैं नमाज छोड़ूंगा, ना सजदा और ना रुकू। अल्लाह के नबी सल्लम का इरशादे ग्रामी है कि जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ेगा, वो अल्लाह तला से इस तरह मिलेगा कि हक के ताला शानू उस पर नाराज होगा। चुनाचे आपने नमाज, आपने इलाज छोड़ दिया मगर नमाज तरक न की। अल्लाह ने खुद ही अपनी रहमत से फिर ठीक भी कर दिया होगा। ये तकवा की बातें हैं, ये वरा की बातें हैं। आप इससे ये मुराद ना लें, मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल उठ गया होगा कि क्या फिर ये दुश्मनी है और क्या अपने आप को किल कर ले। नहीं, इजाजत हो सकती है, वो रुकू क्याम सज इशारे से करते, रुख्सतें मौजूद हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये मौजूद है, लेकिन उनके दिल नहीं मानते थे। याद रखिए कि जो लोग तकवा के आला मुकाम पे होते हैं ना, वो रुख्सतों को भी कबूल नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम उस मुकाम पे चले जाएं कि जहां फिर हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। मुख्तसर ये कि जब नबी सल्लम हद दर्जे की इबादत गुजार थे, इसी तरह आपके सहाबा भी इंतहाई दर्जे के शब जिंदादार थे, यानी रातों को जिंदा रहते थे। और आयमाए कराम और औलियाए औजाम भी इसी रविश पर चले। आयमा इमाम की जमा है, यानी जो आइमे कराम थे, इमाम थे, जो अपने वक्त के लीडर्स थे। और औलिया उजाम, उजाम अजीम से है, बड़े, यानी जो बड़े बड़े वली गुजरे, जो अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत रखते थे, उनका भी यही तरीका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सख्त जिम्मेदारी किसकी हो सकती है? आपसे ज्यादा मसरूफ कौन हो सकता है? लेकिन सारी जिम्मेदारियों की अदायगी के साथ साथ आप बराबर इबादत में मशगूल रहते, एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना होते, और हर वक्त अल्लाह ताला के एहसानात और इनायात का शुक्रिया अदा करते रहते। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लम। यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पुरसुकून और काबिले रश्क नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين